हम सभी एक हाथ से भाई जी का स्वागत करते हैं। भाई जी को ज्ञान में चलते हुए 44 इयर्स हो चुके हैं और भाई जी 39 इयर्स से महायज्ञ में सेवा में समर्पित है। भाई जी को हरियाणा में ज्ञान प्राप्त हुआ। लौकिक में भाई जी राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं और भाई जी के परिवार में भी उनकी चार बहनें भी ज्ञान में हैं और उनकी पांच बेटियां ब्रह्मा कुमारी हैं समर्पित। और हम सभी भाई जी से अनजान नहीं हैं बीदर निवासी। समय प्रति समय हम आपसे मिलते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य रहा। भाई जी यहाँ पांडव भवन में सिक्योरिटी की सेवा देते हैं, इसलिए हम कभी भी ऊपर आते तो भाई जी हमें वहाँ मिलते हैं और वेलकम हमारा उनके द्वारा ही होता है पहले दृष्टि से। और यहाँ जो रात्रि क्लास चलता है उसका प्रोग्राम भी भाई जी बनाते हैं, तो हम सभी भाई जी से बहुत अच्छे अनुभव सुनेंगे। भाई जी से पहले भी अनुभव सुने हैं तो बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव हमारे सामने रखते हैं, तो आज भी भाई जी हमारे बीच अनुभव की लेन देन करेंगे।
ओम शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है तो हम सभी देख रहे हैं कि संसार में हलचल बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, तो उधर हलचल और इधर हमारी स्थिति अचल और अडोल बनती जाए। कोई भी हलचल की बातें परिस्थिति हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करें, उन सभी के प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त रख सकें। एक ऐसी अचल अडोल स्थिति हमारी बन जाए तभी हम अनेक आत्माओं को भी हलचल से मुक्त रख सकेंगे। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वैसे तो आप सभी अपने अपने रीति से पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन कुछ एक बातें आप सभी को अपने अनुभव के आधार से बताएंगे ताकि आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें, तो वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उसके लिए आप सब ज्ञान योग रोजाना करते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैं कुछ एक प्रैक्टिकल करने की बातें बतला रहा हूं। यदि जीवन में हम परिवर्तन चाहते हैं तो हम वैसा प्रैक्टिकल करके चलें। यदि परिस्थितियों में विजयी बनना चाहते हैं तो ज्ञान योग तो सब करते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका स्वरूप बन जाएं हम, तो आपको उन परिस्थितियों में विजयी बनने में सहयोग मिलेगा। तो उसके लिए तीन अभ्यास हम सब रोजाना की दिनचर्या में अभी से ही करके चलें। अगर वो तीनों अभ्यास हम रोजाना की दिनचर्या में करके चलते हैं तो आप विघन परिस्थिति समस्याओं के प्रभाव से तो मुक्त रहेंगे ही, इसके साथ साथ पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, पवित्रता में संपूर्णता आती चली जाएगी, मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ सहज योग का भी अनुभव करेंगे। तो ये तीन अभ्यास अभी से सब रोजाना की दिनचर्या में शुरू कर दें। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। कल की मुरली में भी देखो बाबा ने आत्मा का कितना पाठ पक्का कराया। क्यों? क्योंकि अब सब हमको ये शरीर से छोड़कर और वापस घर जाना है, इसलिए अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। और बाबा ने यह भी कहा कि यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विदानर बनाएगा और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। क्या? ऐश्वरीय बनने की प्रैक्टिस। और इस अभ्यास में हम अपने आप को इतना परफेक्ट बनाएं कि हम जब चाहें जहां चाहें संकल्प की 8 सेकंड में शरीर बन जाएं। क्योंकि ये अभ्यास जिन्होंने बहुत काल का किया हुआ होगा उनको अंत में शरीर छोड़ते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ये अभ्यास नहीं किया या कम किया है तो ऐसी आत्माओं को अंत में शरीर छोड़ते समय तकलीफ होगी। तो इसलिए भी इस अभ्यास में हम अपने को परफेक्ट बनाएं। शरीर छोड़ना क्या है? आत्मा का शरीर से अलग होना ही शरीर छोड़ना है ना। अब जो रोजाना ही कितनी बार मरते हैं दिन में, शरीर ही बनते हैं शरीर छोड़ते हैं, तो उनको मरना क्या बड़ी बात है? तो वो सहज और सरल हो जाएगा। इसलिए अभ्यास सारे दिन में हम कम से कम 50 बार, 1-1, 2-2 मिनट जब भी स्मृति आए, इस देह से डिटैच, न्यारे हो जाओ, शरीर ही बन जाओ, बिंदु बन जाओ। तो ये अभ्यास बहुत काम आएगा, मनसा सेवा का भी साधन बनेगा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। इसलिए इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। अब सारे दिन में कोई अभ्यास जिन्होंने किया हो और अंत में वही करना पड़े तो क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा ना। तो कैसे है शरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का साधन बनती है? एक छोटा सा अनुभव अंत में तो होगा ही, लेकिन वर्तमान में भी। तो एक भाई का फोन आया, उसको उग्रवादियों का मैसेज मिला, फलानी डेट तक 50 लाख रुपए पहुंचा देना नहीं तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, वो डेट निकल गई। डेट निकल जाने के 5 दिन बाद 5 उग्रवादी दिन के 2 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गए और कहा कि पैसे निकालो। तो उसने कहा कि मेरे पास तो नहीं है। बोल नहीं है तो हमारे साथ चलिए। बोल ठीक है, जहां चलना है चलिए। तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ले गए जहां उनका ठिकाना था, वहां ले जाकर उसको एक कमरे में बंद कर दिया। और वहां उनका एक व्यक्ति रहता था काले कपड़े पहनकर, उसका काम था या तो यदि कोई पैसे लेकर आता है नहीं तो उसको खत्म करना। तो उस व्यक्ति ने कहा उसको का पैसे लेकर आए हैं? तो उस भाई ने कहा नहीं। फिर कहा कि आप जानते हैं मैं कौन हूं? तो कहा कि हाँ मैं जानता हूं, आप भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपका सुधर्म शांति है, परम धाम के निवासी हो। ऐसे से उसको बाबा का ज्ञान सुनाने लगा। तो वो सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य करता है, आज तक यहाँ जो भी व्यक्ति आए मरने से सब घबराते हैं कांपते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बतला रहा है, इसको जरा भी डर नहीं है। तो बोल देखो आपकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं आपको छोड़ देता हूं तो मेरे साथ वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधे खड़े हो जाइए, हमें आपको खत्म करना है। तो खड़ा हो गया और उसको मारने के लिए पिस्तौल उसके सिर में यहां लगा दी। पिस्तौल लगाने के बाद फिर उसको पूछता है कि आपको अभी डर नहीं लग रहा है? तो भाई जवाब देता है कि देखो आप मेरे को तो मार नहीं सकते। बोल कमाल है, पिस्तौल लगी मारने के लिए, कैसे मार नहीं सकते? बोल बोल देखो आत्मा तो जन्म मरण अविनाशी है, तो मैं तो आत्मा हूं, बाकी आप इस शरीर को खत्म कर देंगे तो शरीर तो वैसे भी विनाशी है। तो ये जवाब सुनकर वो बड़ा आश्चर्य करता है, मरने का समय आया है ये तभी भी ऐसे जवाब दे रहा है, इसको जरा भी डर नहीं। तो बोल अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है और आप सीधे खड़े हो जाइए, हमें आपको खत्म करना है। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा तो एकदम वह शरीर ही बन के, बिंदु बन के बाबा को याद कर रहा है और बाबा से यही योग लगा रहा है कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि मिले ताकि ये गलत काम करना बंद करे। ऐसे एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेकर और उस आत्मा को दे रहा है। ऐसे खड़े खड़े 3 मिनट बीते और 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति के हाथ से वो पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई, उससे चली नहीं। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किया तो नहीं, लेकिन वो जो बाबा से एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर दे रहा था उस आत्मा को, उन पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस ने उस आत्मा के मन के विचारों को बदल दिया। और जब मन के विचार बदल गए तो कर्मेंद्रियां फिर वैसा कार्य कैसे करेंगी? इसलिए इससे पिस्तौल चली नहीं, छूट के नीचे गिरी और उसने कहा कभी हम आपको छोड़ देते हैं, 50 लाख नहीं तो 25 लाख रुपए फलानी डेट तक जरूर पहुंचा देना, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर फिर से उसी गाड़ी में बिठाए, उसकी दुकान के पास छोड़कर चले गए। तो इस तरह से जहां पर हम इस देह और देह की दुनिया से डिटैच न्यारे हो जाते हैं, तो वहां ये नियम है, को सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां हमारी छत्र छाया बन जाती हैं, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों की छत्र छाया हो, वहां भगवान आपको मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। इसलिए इस प्रैक्टिस में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। पहली बात बताई, 50 बार अशरीर बनने की प्रैक्टिस, और दूसरा 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। सारे दिन में जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हैं। क्या होगा इससे? क्योंकि हमारी आंखें जो कुछ देखती हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो चलो अभी यह शरीर बन जाओ, 3 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का समय हुआ है, तो हम बतला रहे थे दूसरा अभ्यास कि आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखने का अभ्यास करना है। ये अभी से शुरू कर दें हैं, यहाँ बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं, 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं। तो क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार क्या हुआ? दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना लें, तो फिर आपको संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। करके देखिए। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, इमर्ज कर लो। अनुभूति के लिए जरूरी है तो वैसा एक चित्र सीन दृश्य में इमर्ज कर ले अपने सामने, तो अनुभव करना सहज और सरल होगा। उसका स्वरूप बन जाए, उसमें स्थित हो जाए कि मैं ये हूं, तो अनुभव सहज हो जाएगा करना। तो वो चित्र जो हमें बनना है, ये हमारे इस संगमयुगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है, फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है, वो स्वरूप को हम बार बार अपने सामने लाए अभी से ही, कि ये मेरी मंजिल है, ये मुझे बनना है। तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों अभ्यास सारे दिन की दिनचर्या में रोजाना आप करके चलो, उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे, मन बुद्धि से जी एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। करके देखिए। इसके साथ साथ अचल अडोल स्थिति बनाना क्यों जरूरी है? थोड़ा तो गीत में भी सुना और सुनाया भी कि हलचल की परिस्थितियों से मुक्त रहने के लिए, उनके प्रभाव से मुक्त रहें, उसके लिए जरूरी है। तो बाबा के इस संबंध में महावाक्य है कि बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसलिए भी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना, योग युक्त बनाकर चलना, अचल अडोल बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा ही अनुभव, ज्ञान तो आप सब सुनते हैं, मैं हर बात के पीछे के अनुभव सुनाऊंगा। ज्ञान होने के बाद भी जब किसी के सामने कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो क्या होता है? कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी हुआ खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें। क्यों? सब कुछ होते भी कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि ज्ञान भूल जाता है। मर्ज हो गया है। तो आवश्यकता है ज्ञान को इमर्ज रूप में रखकर चलने की, ज्ञान स्वरूप बनकर चलने की, ज्ञान को रिवाइज कर चलने की। तो ज्ञान इमर्ज रूप में रहेगा तो जब जैसी बात समस्या आई तुरंत वैसी पॉइंट का प्रयोग कर आप एक सेकंड में विजयी बन जाएंगे। तो कहीं भी सोचना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा या प्रश्न नहीं उठेगा। और जहां किसी भी संबंध में परिस्थिति के बारे में आपने अनुभव सुना है भाई ये समस्या आए तो हम इसको ऐसे पार कर सकते हैं, तो अनुभव अनुभवी मूर्त बनाता है, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाता है, अनुभव उन परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। तो इसलिए मैं ज्ञान के साथ साथ एक एक अनुभव सुनाऊंगा ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। तो एक ऐसा ही अनुभव कि जहां स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। एक बार हम आसाम जा रहे थे भट्ठी कराने के लिए, तो बाई ट्रेन आबू रोड से दिल्ली, दिल्ली से आसाम जाना था, और ये समय था दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग का। तो उस समय आप लोग भी सुनते होंगे, देखते होंगे न्यूज में, दिल्ली और आसपास में बहुत धुंध कोहरा रहता है सर्दियों के समय, जिसके कारण बहुत सारे ट्रेन प्लेन कैंसिल हो जाते हैं, देरी से चलते हैं। और न्यूज में भी हम सुन रहे थे कि इतने प्लेन कैंसिल हो गए, ट्रेन कैंसिल होगी और देरी से चल रही है। अब इनका हमारी यहाँ आबू रोड की ट्रेन दिल्ली लेट पहुंची तो आगे की ट्रेन निकल जाएगी, सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। तो हमने एक प्रयोग किया, प्रकृति को इमर्ज कर और अपने सिरे सोमान में स्थित होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को दान दे रहा हूं। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली में 24 दिसंबर और 8 जनवरी के आसपास में मौसम ठीक रखने में आपके सहयोग की कामना करते हैं। ऐसे कर प्रकृति को इमर्ज कर पावरफुल वाइब्रेशन दिए, बात की, और हम 23 तारीख को रात को बैठे आबू रोड से दिल्ली के लिए ट्रेन में, 24 तारीख को मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचे। वहां एक भाई लेने आया स्टेशन पर, तो कहने लगा भाई साहब यहां कल रात तक बहुत धुंध कोहरा था, आज ही मौसम क्लियर हुआ है। और ऐसे ही जब वापस आसाम से आ रहे थे तभी भी 8 जनवरी को वहां भी यही देखा, तो बिल्कुल मौसम क्लियर था, तो ट्रेन भी राइट टाइम पहुंची, यहां की ट्रेन भी राइट टाइम चली, तो सब कुछ ठीक समय पर हो गया। तो इस तरह से जहां सो स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं, इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ चलडोल बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए किन बातों का ध्यान देकर चलें, तो उसके लिए सबसे पहली बात, हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। क्यों, किसी भी कार्य के लिए हमारे मन में सबसे पहले संकल्प आता है ना, ये कार्य मुझे करना है, वहां जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना। अगर वो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है, सकारात्मक है, तो उसका रिजल्ट फिर वैसा मिलेगा, और संकल्प यदि नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट वैसा मिलेगा। तो कोई भी परिस्थिति समस्या आए, कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाए, क्योंकि बाबा ने तो कहा ये जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो ये बात भी हम हर एक अपने आप से पूछ लें कि क्या जो हम बनना करना चाहते हम वही सोचते हैं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाना है, तो जो सोचेंगे फिर वही होगा। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने, उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें। जो हम बनना करना चाहते हैं उस पॉजिटिव पावरफुल संकल्प को अमृत वेले आंख खुलते अपने अंतर मन में कम से कम 9 बार भर दो कि मेरे जीवन का लक्ष्य यह है, मुझे ये बनना है, ऐसा करना है, तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते चले जाएंगे। तो एक अनुभव, एक भाई को कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया, और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया, उसने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण किस आधार से होता है शरीर में? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया कि मुझे जिंदा रहना है, भगवान की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो कैंसर की बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल निकलते गए। और आज इस बात को लगभग 15 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की अक्की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली बजाई, लेकिन आप लोगों ने जोर से नहीं बजाई। हाँ, क्यों मैंने ये बात कही कि कई थोड़ा सा सुनते सुनते क्लास वाणी से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ताली बजती है तो सब में अलर्टनेस आ जाती, चुस्ती आ जाती, क्योंकि समय ऐसा है। तो जहां आपको लगे जरूरत है तो जरूर बजाएं हैं ताकि क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। तो इस तरह से एक एक हमारे पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या आए, कभी मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं, तो आप जो सोचेंगे वही होगा फिर। और रचलडोल स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस। ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। तो स्वमान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं। विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाए। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को भी खत्म किया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता, स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, कैसे एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं, देते नहीं है, धोखाधड़ी करके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या करें, हलचल का कारण बनते हैं ना ये बातें। हम तो एक भाई का फोन आया, कहने लगा, भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, मैंने जमीन की एक प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में, बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, खाक फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। मैं पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो मैंने पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, कहा आपको हम ये प्लाट नहीं ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के दो प्लाट थे साथ साथ, तो बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है दो नंबर। नहीं बोल मुझे तो एक नंबर ही चाहिए, बोले एक नंबर नहीं मिलेगा दो नंबर देंगे। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद 15 दिन बाद गया महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं कर रहा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका फोन आया, भाई साहब ऐसे से मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई है, मेरा योग नहीं लगता है, वो इस संकल्प विकल्प बुद्धि में चलते हैं, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए जिसने मेरे पैसे लिए, और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। मैंने कहा ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा और बताना इसका रिजल्ट क्या है। तो उसने ऐसा ही किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं, ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन से बाबा के योग ने कराया। तो आप में से विकनों के सामने कोई ऐसी समस्या हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं, क्योंकि व्यर्थ के विचार भी हलचल का कारण बनते हैं ना। होगा नहीं होगा, क्या करें कैसे करें, क्या होगा, ये सब हलचल के कारण बनते हैं ना। ऐसे विचार चाहते नहीं हम, लेकिन आ जाता है, पता नहीं मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा, हो पाऊंगी या नहीं। तो ऐसे व्यर्थ जहां पर है, और व्यर्थ चलता क्यों है, जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं। मन का काम है संकल्प करना, अगर ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो वो अपना काम करेगा, जो देखेगा जो सुनेगा उसी अनुसार संकल्प चलेंगे। तो जिनको अचल अडोल स्थिति बनानी है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, वो अपने आप को सदैव ज्ञान के मनन चिंतन, कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन स्टडी करके चलना, इन सब बातों में अपने आप को बिजी रखें, तो वहां व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। तो आपके विचार समर्थ शक्तिशाली बने रहेंगे, और जहां विचार समर्थ शक्तिशाली हैं तो फिर आप कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकेंगे। तो इस संबंध में भी बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, एक अनुभव। एक भाई को कोई बतला रहे थे कि एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको बताया कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। और तीसरा, मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के जाना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएगा। गया वो, तो जहां पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए तो 2 बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देख कर वो कहते, अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोल, फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोल हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोल हाँ जी। तो उसने थोड़ा सा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया, योग पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, अक्सर अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा अब तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न किया उससे कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोल, मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले, गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। ये इंटरव्यू हो रहा है देखो है। बात ये नहीं है इंटरव्यू में कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो भी आपसे पूछा जाए आप उसका कितना फास्ट और एक्यूरेट रीति से जवाब देते हो उस पर इंटरव्यू की सफलता निर्भर करती है। तो उससे जो कुछ पूछा गया वो फटाफट उसका वैसा ही जवाब देता गया। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। तीन चार मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हुआ है फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर पांच मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ, समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए लेकिन कभी अपने मन में व्यर्थ के विचारों को नहीं आने दें, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर जो आप सोचेंगे वही होगा। अगली पॉइंट, टचल अडोल स्थिति बनाने के लिए आज के संदेश की बाबा की पॉइंट, सदा भगवान का साथ और हाथ, भगवान का साथ सर्वशक्तिवान का और उसका हाथ मेरे सिर पर है, सदा ये अनुभव करो। तो जहां सर्वशक्तिवान का साथ हमारे साथ दे रहा है निरंतर, उसकी शक्तियां हमारे साथ ही बनकर साथ दे रही हैं, तो वहां भी असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे। तो ऐसा ही एक अनुभव, आप लोगों ने कोई सेवा की हो और फिर से करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो सोचेंगे ना मैं ये सेवा कैसे करूंगी या करूंगी। कई बार हो जाता है ना, कोई वो व्यक्ति कार्य सेवा करने वाला जो रोजाना करता है वो नहीं होता, तो फिर नए कोई सेवा मिलेगी ना भाई वो है, तो आप सोचेंगे मैं ये सेवा कैसे करूंगी या करूंगा। लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया तो फाइनल बात है कि आपसे बाबा वो कार्य करवा लेगा, क्यों कराने वाला तो वो है आप, हमको तो सिर्फ निमिति बनना है। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करना है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है, क्योंकि उसी में ही कल्याण है। ये साधारण बहन नहीं, ये पवित्रता की देवियां हैं, भगवान के राइट हैंड है, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है, इसलिए वो एक बाबा की श्रीमत हो जाती है, उसमें ही कल्याण है। तो जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो कैसे वहां असंभव भी संभव हो जाता है, एक प्रैक्टिकल का अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, जैसा कि बताया मुझे मधुबन में रहते 39 साल हो गए हैं, तो उस समय तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ भी नहीं था, जो था मधुबन ही था, सब दादियां यहां रहती थी, बाबा भी वहीं आते थे ओम शांतिवन में। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों पर भाषण करना क्लास कराना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए, वो सीखें आगे बढ़े। तो उस विचार को लेकर दादी ने हमारे को भी कहा कि आपको भाषण करना है। उस समय हम साउंड में थे तो बार बार दादियां क्लास कराने आती थी तो मिलना होता था, तो जानती थी दादी। तो अब मैंने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, क्योंकि हमने उसके पहले कभी दो शब्द भी किसी के आगे खड़े होकर नहीं बोले थे स्टेज पर। अब ऐसे व्यक्ति को कहोगे स्टेज पर खड़े होकर भाषण करना है तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा उसका, है। तो मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, दादी ने मेरे को बोला है भाषण करना है, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली कि बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो ये पॉइंट स्मृति माता ही थोड़ा शक्ति आ गई, हम इनका ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है और सफलता पाई है, फिर से वही करना है तो कौन सी बड़ी बात है, तो थोड़ा शक्ति आ गई। और बाबा को याद कर ये भी कह दिया बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना, आप ही भाषण कराना, ये भी बता दिया बाबा को। तैयार हो गए जी, प्रोग्राम ऐसा था टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे, कहा कि ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिट्ठी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिट्ठी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अब तैयारी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। अच्छा उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। अभी क्या तैयारी करें भाई, कुछ पता ही नहीं क्या टॉपिक आएगा। चलो ठीक है जी, एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए, रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, क्योंकि सीजन के समय ये प्रोग्राम हो रहा था तो बाबा से मिलने के लिए बहुत भाई बहन आए हुए थे। तो और सब दादे दादियां आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। सात बहनें सात भाई, सब नए नए जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था, क्योंकि उनको सिखाना, इसलिए ऐसे लोगों को ही सेलेक्ट किया गया और उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, तीन लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले भाई इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया और मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद करके के बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आते गए, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच, अभी ये बात तो 38 साल पहले की है, मुझे सब बातें तो याद नहीं है, फिर भी बहन जी बोल रही है तो एक दो बातें जो याद है वो बता देता हूं। सबसे पहली बात तो हमने मन से ये स्वीकार कर लिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, क्योंकि भाई हैं तो भाई की टोन बोलने की आदत है। अच्छा, टॉपिक ऐसा मिला कि जब तक मन से उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे हम तब तक बोल नहीं सकते उस प्रॉपर। तो पहली बात तो मन से ये स्वीकार किया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। दूसरा कि उस समय कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही थी, यहां पहले तो यही सब कुछ होता था ना, तो वो पॉइंट भी बाबा ने टच की। तो यदि मैं ब्रह्मा कुमारी होती तो जो बहनें करती हैं सेंटर की रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखती, अच्छे अच्छे भाई बहनों को मधुबन लाती, बाबा से दादियों से मिलाती, और यदि दादी कहती तो मैं कुमारियों के ट्रेनिंग में भी क्लास कराती, और ऐसा क्लास कराती कि जो सभी कुमारियां कहती कि दादी जहां भेजेगी वहीं सेंटर पर जाएंगे, तो फिर सेंटरों पर जो आज बहनों की कमी है वो पूरी हो जाती। तो इस तरह से ऑन द टॉपिक बोला तो बहुत लोगों को तालियां बजाते रहे, इसलिए उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो बात उसकी नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब भी बाबा की तरफ से जो भी एक डायरेक्शन मिले, हम जो भी श्रीमत मिले और भगवान को अगर हम साथी बना के चलते हैं तो वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे, तो सारी हलचल खत्म हो जाएगी। तो आप भी यह प्रयोग करके देख सकते हैं। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बने, सहज निरंतर योगी बन जाएं, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं, ऐसी शुभ भावना शुभ कामना यदि हम अपने मन में सर्व के प्रति रख के चलते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये नियम है कि जैसा हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं वैसे ही दूसरे भी हमारे लिए सोचते हैं। तो यदि हम अपनी भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बना के चलेंगे तो दूसरे भी हमारे लिए वैसी भावना रख के चलेंगे, और फिर हम जो चाहते हैं वैसा बनना करना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, डिसरिगार्ड करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? रहती है ऐसी आत्मा के प्रति मन में शुभ भावना या बदल जाती है? काफी लोग यही कहते हैं बदल जाती हैं, थोड़े लोग कहते हैं रहती हैं। तो देखो, अगर भावनाएं बदल गई तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे, और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे और पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन हम अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलते हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके आधार से कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। एक ऐसा ही अनुभव, आप में से बहुत ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, रुकावट डालते हैं, कई ऐसे भाई भी हो सकते हैं जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलते, वो विरोध करती है, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए ये प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था और उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। लेकिन बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था तो बाबा के घर भी क्लास करके आ जाते थे। तो एक बार वो भाई मधुवन आए बाबा से मिलने के लिए, क्लास के बाद हमारे से मिले। उन्होंने यही प्रश्न किया कि भाई साहब मेरी युगल बहुत बिगड़ डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो उनको हमने बताया कि आप एक प्रयोग करो, अगर आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो आज से ही दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में उस आत्मा के प्रति कंप्लीट शुभ भावना शुभ कामना रख के चलनी है। दूसरी बात कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं बतला रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो जिस भी आत्मा को हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहजी स्वीकार कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। ये है इसका विधि, इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उस आत्मा को अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लेना योग में, और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस बाबा से लेके देना, बात करना कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बात भी उस समय बता देना जिसमें कि वो विरोध करती थी। ऐसे में इनका 7 दिन अपनी युगल को अमृत वेले योग में सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता। वो यहां से गए, घर जाने के बाद अमृत वेले उठकर और अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उन्होंने इसी तरह से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बात भी उस समय बता दी जिसमें कि वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हां हां भले जाओ। तो जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन, उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से विकनों के सामने कोई ऐसी समस्या हो तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। इसलिए मैं हर बात के पीछे एक अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। अगली पॉइंट, हलचल का कारण बनती है अपवित्रता, इसलिए पवित्रता में हम संपूर्ण बनाए अपने आप को। हम सब पवित्र तो बने हैं लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए, उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता, और इसके साथ साथ कब कहां हमको क्या करना है। अगर बुद्धि की लाइन आपकी क्लियर नहीं है तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा और वहां हलचल पैदा होगी, क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें। तो एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलना, और दूसरा अब वापस घर जाने का समय आया है इसलिए अपने सभी प्रकार के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाएं। तो बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी, और जहां बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, प्रश्न नहीं उठेगा। तो बुद्धि की लाइन सदैव बाबा के साथ क्लियर रहे उसके लिए बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो हम सब पवित्र तो बने हैं लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए, उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता, उसके लिए अव्यक्त वाणियों में बाबा ने सात बातें बताई हैं। उन सातों बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर हरेक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है। जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी, और जहां बुद्धि की लाइन क्लियर है तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपके लिए दुनिया की सभी लाइन फिर क्लियर ही मिलेंगी। तो पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता, खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सभी प्रकार की यदि स्वच्छता है, सफाई है, तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्माचारी कहा जाता है। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे पांच विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, नफरत, सुस्ती, आलस, छलबेलापन, जो भी नेगेटिव बातें हैं, उनमें से यदि एक भी हमारे अंदर है तो वो भी अपवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी। इसलिए किसी भी विकार का अंश मात्र भी ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण निर्विकारिता या संपूर्ण पवित्रता। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एकव्रता। एकव्रता अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। पांचवा स्वरूप, एक साकार मुरली में यह बात बताई बाबा ने कि अमृत वेले से रात्रि तक, और आज के संदेश में बाबा का इशारा था सभी नियम मर्यादाओं की पूर्व पालना करके चले, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो। नियम मर्यादाओं को कंगन सदैव बंधा रहे ना, आज के संदेश में था है, तो कोई हलचल नहीं होगी वहां भी। छठा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का बाबन का व्यर्थ संकल्प भी है पवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चले। सातवां स्वरूप बाबन का संकल्प अथवा स्वपन में भी, संकल्प अथवा स्वपन में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को अपने सामने लाकर हम एक चेक कर लें कि अपने आप को हमने कितना पवित्रता में संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी तो स्वतः ही बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी, और जहां बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे, और दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी। तो ऐसा ही एक अनुभव, एक बार हम ऑनलाइन क्लास करा रहे थे लाइब्रेरी में, ओम शांति भवन के नीचे लाइब्रेरी में बैठ के पूना, तो मुझे पता नहीं था वहां सिग्नल कम पकड़ता है टावर, तो ज्वाइन कर लिया, बात होने लगी, दो मिनट लाइन चली और कट गई, फिर ज्वाइन किया, फिर दो मिनट बात हुई, फिर लाइन कट गई। अब मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अब लोग सब देख भी रहे हैं, बार बार लाइन कट रही है तो ये ठीक नहीं है। मैंने कहा जब तक मैं क्लास पूरा नहीं करूं तब तक लाइन कटनी नहीं चाहिए, ऐसे बाबा को दिल से याद कर बता दिया, और उसके बाद लाइन एक रस, पूरा पौना घंटा क्लास कराया, और जैसे ही ओम शांति किया टावर भी ओम शांति हो गया। तो इस तरह से यदि उसके साथ हमारी लाइन क्लियर है तो फाइनल बात है कि दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी। और एक ऐसा ही अनुभव, एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्टी कराने बाय रोड जी,
हाँ जरूर चलो। तो नेपाल जा रहे थे बाई रोड, तो इंडिया के बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था इधर, और उधर नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था। तो 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, तो बीच में दोनों देशों का बॉर्डर पड़ता था। तो उस दिन हम जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो वो रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था। तो हमारे को कहा कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तब वहां नेपाल के सेंटर पर भट्टी रखी है, 250-300 लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ, तो एक बड़ी समस्या होगी ना। तो अभी क्या करें जी। तो मैंने वहां से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा से कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई कि बाबा अभी देखो यहां से हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां से 4 किलोमीटर अंदर नेपाल में अपना सेंटर है, वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे, बॉर्डर बंद किया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे बाबा को सारा समाचार बता के मैंने कहा। बस 2 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ, आप उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है। तो एक भाई और भी थे हमारे वहां के उस साथ में, तो दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो उस भाई को मैंने बोला कि मैंने कहा भाई ये मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ, आप उससे चल के बात करो। तो हम दोनों गए तो उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू से हेडक्वार्टर से आए हैं और हमारा नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, उनके इनके लिए वहां बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हो, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं फिर तो जाइए। तो जो 2 मिनट के पहले ना हो गई, 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे हाँ हो गई? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। तो वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि कब हमको कहां क्या करना है हलचल की परिस्थितियों में। तो वो तभी संभव होगा जबकि हम बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रखे चलेंगे, तो सही समय पर सही टचिंग को कैच कर वैसा करने में सफल होते रहेंगे तो सभी प्रकार की हलचल खत्म हो जाएंगी। लास्ट संदेश का एक स्लोगन, सॉरी संदेश नहीं एक स्लोगन मैं आपको सुना के पूरा करता हूं कि एक स्लोगन है अपना, कई जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। मेरा यह अनुभव है कि सोचने का काम भी भगवान हमारे लिए करता है, क्या करना है, करना है नहीं करना है, ये सोचने के बजाय हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस उसे याद करें, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। ऐसा ही एक अनुभव, एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्टी थी, उन्हीं के कनेक्शन में 3 जगह अलग अलग जगह एक एक दिन की और भट्टी थी 3 सेंटरों पर। अब एक एक दिन की भट्टी होने के कारण ही दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। और 4थे दिन वहां की बहनजी ने 4थे सेंटर पर मॉर्निंग क्लास रखा था, तो जब 4थे सेंटर पर मॉर्निंग क्लास कराने के लिए हम पहुंचे 7 बजे, तो वहां की बहनजी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था, तो बहनजी की बात मैंने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला। मैं बाबा को याद कर कहने लगा बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है और बहनजी ने आगे का प्रोग्राम दिया कि क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है, तो अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया और बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया और बहन जी आके कहती है अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो उसके बाद जाना क्लास का। वाह भाई, इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा है इसमें कोई शक नहीं, तो मेरे लिए क्या सोचता होगा। इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, कई बाद में भी आए हैं जो हमने बातें बताई हेडलाइंस। तो पहली बात कि तीन अभ्यास बताए अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए। सारे दिन में 50 बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस, 50 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास, और तीसरा स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। दूसरी बात बताई कि संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। तीसरी बात बताई कि कोई न कोई सुमान का अभ्यास कर चलें। चौथी बात बताई कि सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें। और पांचवी बात बताई कि व्यर्थ से कंप्लीट अपने आप को मुक्त बनाएं, समर्थ संकल्पों का स्वरूप बन के चलें। छठी बात बताई कि अपने मन में निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखे चलें। सातवीं बात बताई कि बुद्धि की लाइन बाबा के साथ सदैव क्लियर रखे चलें। लास्ट बताई कि हम सिर्फ एक जिम्मेवारी निभाएं, बाबा को याद करें, सोचने का काम भी हमारे लिए वो करता है। तो इन कुछ एक बातों को अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक अचल अडोल स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। भरते हुए ना किसी ने